It is my sincere desire and prayer for all brothers and sisters.
और सारे भाइयों और बहनों के लिए मेरी ये दिल से एक प्रार्थना है और इच्छा है
That our Christian life is based on a good foundation.
कि हमारा मसीही जीवन एक अच्छे नींव के ऊपर रखा हुआ हो।
I see many people who are not aware about their own need.
मैं देखता हूं कि कई लोगों को अपने ही जरूरत की वो नहीं जानते।
They have knowledge.
उनके पास ज्ञान तो है।
They can advise others.
वे दूसरों को भी सलाह दे सकते हैं।
But there is no change in life.
पर उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है।
They get quickly offended.
वो बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं।
Sometimes they are arrogant and proud.
कई बार वे बहुत ही बलवा करने वाले और घमंडी होते हैं।
Not willing to take the slightest of correction from others.
दूसरों से छोटा सा छोटा भी अगर सुधार आता है तो वो उसको प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं होते।
The reason is a proper repentance in their life has not happened.
इसका कारण ये है कि उनके जीवन में एक सही प्रकार का मन फिराव नहीं हुआ है।
They may have even taken water baptism.
शायद उन्होंने पानी का बपतिस्मा भी लिया होगा।
Without probably understanding the meaning of it.
उसका अर्थ बिना समझे हुए।
But Bible says that anyone born in Christ is a new creation.
पर बाइबल कहती है कोई भी अगर मसीही में है तो वो एक नई सृष्टि है।
Old things have passed away.
पुरानी चीजें बीत गई हैं।
Lo, everything is new.
सब कुछ नया हो गया है।
I remember in my own life how God spoke to me some years back.
मुझे याद है मेरे ही जीवन में कैसे परमेश्वर ने कुछ सालों पहले मुझसे बात की थी।
When I had knowledge about scripture.
जब मेरे पास परमेश्वर के वचन के बारे में ज्ञान था।
I used to listen to a lot of messages and videos.
मैं कई अलग अलग मैसेजेस को सुनता था, अलग अलग वीडियो में देखता था।
It was all in my head here.
ये सारी चीजें मेरे मन में, मेरे दिमाग में थी।
It can be like a physical disorder, having a disproportionate head and abnormal size of head.
और ये एक शारीरिक बीमारी या विकलांग लोगों के प्रमाण हो सकता है, जिसका जो सिर है, उसका आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है।
And as I had knowledge, I used to despise other believers.
और क्योंकि मेरे पास ज्यादा ज्ञान था, ज्यादा समझ थी, मैं दूसरे लोगों को तुच्छ जानता था।
But God spoke to me once, which changed my life.
पर एक बार परमेश्वर ने मुझसे बात की, जिसने मेरे जीवन को बदल दिया।
This is what God spoke to me.
परमेश्वर ने मुझसे ये कहा।
You have knowledge.
तुम्हारे पास ज्ञान है।
They have a life.
उनके पास जीवन है।
So I realized that day the knowledge and the life are different.
उस दिन मुझे इस बात को महसूस हुआ कि ज्ञान और जीवन दो अलग-अलग बातें हैं।
Nothing wrong in having knowledge.
ज्ञान होने में कोई भी गलत बात नहीं।
Rather, it is good to have knowledge.
ये तो एक अच्छी बात है कि हमारे पास ज्ञान है।
But just having knowledge doesn't mean that I have life that comes out of the knowledge.
पर अगर हमारे पास सिर्फ ज्ञान है, इसका ये मतलब नहीं होता कि उस ज्ञान से हमारे अंदर जीवन उत्पन्न हुआ है।
Even John the Baptist, when we preach about the baptism of repentance before Jesus.
बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी जब यीशु मसीह के पहले मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार कर रहा था।
He challenged people to bear fruits keeping with the repentance.
उसने लोगों को यही कहा कि एक अच्छा फल, जो मन फिराव का फल होता है, वो फल उनके जीवन में दिखना चाहिए।
He spoke against selfishness.
और जो अपने ही लिए जोड़ के रखने की चीज है, उसके खिलाफ उसने बात किया।
He encouraged people who came to him to share what they have with those did not have.
जो लोग उसके पास आए, यूहन्ना बपतिस्मा ने उनसे कहा, दूसरों के साथ, दूसरों के पास जो नहीं है, उनके साथ वो बांटो।
He spoke against corruption.
वो भ्रष्टाचार के खिलाफ उसने प्रचार किया।
Collect no more than what you have been ordered to collect through tax collectors.
जो चुंगी लेने वाले थे, उनसे उसने कहा, जितना तुमसे कहा गया है, उतना ही पैसा तुम वसूल करना।
And to soldiers he said, do not take money from anyone by force.
और जो सैनिक थे उनसे उसने कहा कि ज्यादा जबरदस्ती करके लोगों से पैसे मत लेना,
डोंट अक्यूज एनीबडी फॉल्सली,
झूठा किसी पर आरोप नहीं करना,
एंड बी कंडेंड विथ योर सैलरीज,
और तुमको जितना भी तुम्हारी आय है उसी के साथ तुम खुश रहना।
लेटर व्हेन जीसस व्हेन ही जीसस स्टार्टेड टीचिंग द डिसिपल्स ऑन द सर्मन ऑन द माउंट,
आगे जब पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखा रहा था,
ही इंसिस्टेड अबाउट द नीड फॉर फ्रूट्स, बेयरिंग फ्रूट्स,
उसने वहां भी इसी बात पर जोर दिया कि हमारे जीवन में फल होना ज्यादा जरूरी है।
He spoke, he warned people about those who are sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves.
उसने ये भी कहा, ऐसे लोग जो बाहर से तो भेड़ दिखते हैं पर अंदर से फाड़ने वाले भेड़ियों के समान हैं।
And he said, you will know them by their fruits.
और यीशु ने कहा, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे।
And a tree is known by its fruit.
और ये भी कहा कि एक पेड़ को अपने फल से पहचाना जाता है।
So this is something which should challenge all of us. Our life our character or fruit should witness our faith or our what we profess.
और ये एक बात है जिसने हम सबों को चुनौती देनी चाहिए कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो बर्ताव है, ये हमारे विश्वास के लिए एक गवाही बनना चाहिए।
Jesus told in Matthew chapter 7:21.
यीशु मसीह ने मत्ती 7 उसके 21 में कहा,
Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven.
जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा।
Meaning, our sweet talk, saying that Lord, Lord, just lip service, have no value.
इसका मतलब सिर्फ मीठी मीठी बातें करना और अपने ओठों से कहना हे प्रभु, इन सारी चीजों का कोई भी मूल्य नहीं है।
Just by saying Lord, Lord with our lips, we will not enter the kingdom of heaven.
सिर्फ हे प्रभु अपने ओठों से कबूल करने से हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते।
But he said, he who does the will of my father are those who will enter the kingdom of heaven.
पर यीशु ने कहा, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा।
So we should not deceive ourselves.
और इसलिए हमें अपने आप को फसाना नहीं है।
For our own safety.
हमारे ही सुरक्षा के लिए।
Our faith should not be just superficial.
हमारा जो विश्वास है वो ऊपर ऊपर या बाहरी या दिखावटी नहीं होना चाहिए।
Just lip service.
सिर्फ अपने ओठों के द्वारा उसको बोलना।
Jesus even said about people who claimed that they prophesied in his name.
यीशु ने इन लोगों के बारे में भी कहा जिन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने यीशु के नाम से भविष्यवाणी की थी।
And even in Jesus' name who cast out demons.
जिन्होंने यीशु के नाम से शैतान या भूतों को बाहर भगाया था।
And in Jesus' name who performed miracles.
और यीशु के नाम से उन्होंने अद्भुत काम और चमत्कार किए थे।
But to them Jesus said in Matthew 7:23.
पर ऐसे लोगों से यीशु मसीह ने मत्ती 7:23 में कहा,
I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness.
मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ।
So doing miracles and prophesying everything Jesus said, and at the same time in our secret life, if you are practicing lawlessness.
और इसलिए चमत्कार करना, यीशु ने जो कहा उसी से भविष्यवाणी करना, पर उसी समय अगर हम अपने गुप्त जीवन में कुकर्म कर रहे हैं,
we will have to hear this if we are not careful.
अगर हम सचेत नहीं हुए तो हमको यही शब्दों को सुनना होगा,
I never knew you.
मैंने तुमको कभी नहीं जाना,
Depart from me, you who practice lawlessness.
हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ।
We all will face difficulties in life.
हम सब लोगों के जीवन में कठिनाइयां आएंगी।
We will see rainfall.
हम बारिश देखेंगे।
There will be floods.
और हम बहुत जो बाढ़ आती है उसको देखेंगे।
There will be storms.
और हम तूफानों को देखेंगे।
That is slamming against our house.
जो हमारे घर के बाहर तूफान हम देखेंगे।
But Jesus said, if our house is built on the rock.
पर यीशु ने कहा कि अगर हमारा घर चट्टान पर बना है
आवर हाउस विल नॉट फॉल,
हमारा घर नहीं गिरेगा.
सो वी ऑल विल बी हैप्पी अबाउट इट.
सॉरी अंकल,
वी ऑल विल बी हैप्पी अबाउट इट.
और हम उस बारे में फिर खुश होंगे.
नन ऑफ अस वांट आवर हाउस टू फॉल.
हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारा घर गिर जाए.
वी ऑल शुड बी नेचुरली इंटरेस्टेड दैट आवर हाउस इज बिल्ट ऑन द रॉक.
स्वाभाविक तौर पर हम सब पाते चाहते हैं कि हमारा घर चट्टान पर बांधा हो.
So what does that mean?
इसका क्या अर्थ है?
Jesus made it in simple terms in Matthew 7:24.
यीशु मसीह ने मत्ती 7:24 में बड़े ही आसान शब्दों में इसको बताया.
Everyone who hears these words of mine and acts on them.
इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है.
They are compared to the wise man who built his house on the rock.
यीशु इन लोगों की तुलना उस बुद्धिमान मनुष्य करता है जो अपना घर चट्टान पर बनाता है.
It is in simple words, it is just obedience to what is revealed to us.
आसान शब्दों में जो चीजें हमें परमेश्वर प्रकट करता है उनका उनकी आज्ञा मानना.
That is what it means to build on the rock.
और इसी का अर्थ है चट्टान पर घर बांधना.
If you seek to obey as a habit, continue to obey whatever God speaks to us, and we will be building our house on the rock.
अगर एक आदत के तौर पर हम अपने आप को यह आदत लगाए कि जो कुछ परमेश्वर हमसे कहता है उसको हम आज्ञा मानते हैं, फिर हम अपने घर को चट्टान पर बांधेंगे.
And when the rain falls, when the storm comes, when the floods come, our house, it will slam against our house will not fall.
और जब बारिश बरसेगी, बाढ़ आएगी, आंधियां चलेंगी, तो ये सब हमारे घर से टकराएंगी, फिर भी हमारा घर नहीं गिरेगा.
And Jesus continued to speak about people, about the unwise people.
और यीशु ने आगे निर्बुद्धि मूर्ख लोगों के बारे में भी बताया.
Everyone who hears these words of mine and does not act upon them.
परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता.
And their house and they are building their house on the sand.
वे अपना घर बालू पर बांध रहे हैं.
Sand is like emotions and feelings.
बालू का अर्थ होता है सिर्फ हमारे भावनाएं.
Which will change.
जो बदलती है.
So when the rain come, floods come, storm come, such houses will fall.
और इसलिए जब बारिश बरसती है, बाढ़ आती है और आंधियां चलती है, तो ऐसे घर गिर जाते हैं.
Because we all, whether wise or foolish, we are all going to face rains and floods and storms in our life.
क्योंकि भले ही हम बुद्धिमान हो या निर्बुद्धि हो, हम सब लोग हमारे जीवन में बारिश और आंधी और उस बाढ़ को देखेंगे.
The difference is just on one thing.
और इन दोनों में फर्क बस यही है.
Question is not whether we are heard and whether we are aware, whether we have knowledge.
प्रश्न ये नहीं है क्या हमने इन बातों को सुना है, क्या हमें इन बातों की जानकारी है या हमारे अंदर ज्ञान है.
The question is whether we act upon what we know.
प्रश्न ये है जिन बातों की हमें जानकारी थी उस पर क्या हमने आज्ञाकारिता दिखाई.
The wise man acted upon them or obeyed them.
बुद्धिमान व्यक्ति ने उसके ज्ञान पर काम किया या उसने आज्ञा मानी.
The foolish man heard the same message the wise man heard.
निर्बुद्धि व्यक्ति ने भी वही संदेश सुना जो बुद्धिमान व्यक्ति ने सुने थे.
But he did not act upon or he neglected it. He did not obey it.
पर उस व्यक्ति ने उसके अनुसार अपना जीवन नहीं किया, उसने आज्ञा नहीं मानी और उसने उसको नजरअंदाज किया.
This is what happens to unfortunate many believers.
और दुर्भाग्यपूर्ण ये कई विश्वासियों के साथ होता है.
Our test is when we face rainfall, floods and storms.
हमारी परीक्षा तब होती है जब हम बारिश और बाढ़ और आंधियों का सामना करते हैं.
Which we all will face without fail.
और जो हम सबों के जीवन में आएगा हम उनका सामना करेंगे.
If our house is falling, that is a proof that we are building on the sand.
अगर हमारा घर गिर रहा है तो इसका ये मतलब है कि हम रेत पर अपना घर बना रहे थे.
So that let there be a renewed interest, sincerity in our life and a desire in our life that whatever God is speaking to us in simple terms, I want to obey it by the help of the Holy Spirit.
और इसलिए आइए हम सबों के अंदर ये एक इच्छा हो, एक ईमानदार हमारी इच्छा होनी चाहिए कि जो कुछ परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें कहता है उनको उसकी हमें आज्ञा माननी है.
James told this in a different way, James chapter 1:22.
और याकूब ने इसी बात को एक अलग रीति से कहा, याकूब 1:22.
Prove yourself doers of the word and not merely hearers who delude themselves.
परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं. हम जब चीजों को सुनते हैं हम उनको याद रख सकते हैं और अगर हम में ज्यादा बुद्धि है तो शायद हम उनको समझकर दूसरों को भी सिखा सकते हैं.
And we can judge others when they, those who are not practicing it.
और जब दूसरे लोग उस वचन के अनुसार नहीं चलते तो हम उनका भी न्याय कर सकते हैं.
But if we are not practicing ourselves, we are deluding ourselves.
पर अगर हम खुद उस पर नहीं चलते तो फिर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं.
One of the important condition for discipleship, Jesus said.
और शिष्य होने की एक जरूरी आवश्यकता या शर्त जो यीशु ने कही थी.
That is Luke 9:23.
वो है लुका 9 उसके 23 में.
If anyone wishes to come after me,
यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे,
we always say this, Jesus doesn't force anybody to follow him.
हम हमेशा ये कहते हैं कि यीशु मसीह किसी को जबरदस्ती नहीं करता कि कोई उसके पीछे चले.
He invites everyone, but it is our choice to follow him.
वो न्योता तो सबको देता है पर ये हमारा चुनाव है क्या हम उसके पीछे चलना चाहते हैं या नहीं.
If anyone wishes to come after me,
यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे,
the first thing Jesus said is he must deny himself.
तो पहली बात जो यीशु ने कही वो ये थी तो उसने अपने आप का इनकार करना चाहिए.
This is something we should never forget.
ये एक बात है जिसे हमें कभी नहीं भूलना है.
If we have a desire to follow Jesus Christ, we must learn to deny ourselves.
अगर हमारे अंदर ये इच्छा है कि हमें यीशु के पीछे चलना है तो फिर हमें अपने आप का इनकार करना सीखना होगा.
We have to learn to deal with our self-life.
हमारा जो स्वयं का जीवन है उसके साथ हमें कैसे बर्ताव करना है ये सीखना होगा.
By nature, our self-life is our God.
स्वाभाविक तौर पर हमारा जो स्वयं का जीवन होता है वही हमारा परमेश्वर होता है.
So if you worship our own ego, our own self, we cannot follow Jesus.
फिर अगर हम अपने ही घमंड का या अपने ही आप के आराधक आराधना करने वाले बनेंगे फिर हम यीशु मसीह के शिष्य नहीं हो सकते.
Every opportunity that we get, we should learn to deny ourselves.
हर एक मौका जो हमें मिलता है हमें सीखना है अपने आप का इनकार करना.
And we should learn to take up our cross and then follow me.
और फिर हमें अपना अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे हो लेना सीखना है.
And we have to do this daily, not some years back.
और हमें इस बात को प्रतिदिन करना है, ऐसा नहीं कि कुछ साल पहले हमने इसे किया था.
This is not a one-time incident, one-time event.
ये हमारे जीवन में एक ही बार घटने वाली घटना नहीं है.
Every day, when there is life on our nose, we should learn to deny ourselves.
दिन प्रतिदिन जब तक हमारे में जान है जीवन है हमें अपने आप का इनकार करना सीखना है.
And every day we should learn to take up my cross.
और हर दिन हमें अपना क्रूस उठाना सीखना है.
And then follow me.
और उसके बाद यीशु के पीछे हम चल सकते हैं.
And taking up the cross also meaning that person, you know, in Roman ruling time, we know somebody is carrying a cross, mean people who watch that they know that this man is going to be hanged on that cross which he is carrying.
और क्रूस उठाना जब रोमियों के समय में कोई व्यक्ति क्रूस उठाते हुए दूसरों को दिखता था तो सब लोग जानते थे कि ये व्यक्ति अपना ही क्रूस उठा रहा है जो जाकर उसी क्रूस पर लटक कर मरने वाला है.
That cross also indicates our willing to die to ourselves.
और वो क्रूस इस बात को भी दर्शाता है कि हमारे अंदर ये इच्छा है कि हम अपने ही प्रति मरने के लिए तैयार है.
But those who understand this way, there is a joy that is waiting for them.
पर हमें ये भी समझना है कि इसी के बाद हमारे लिए एक आनंद है जिसके वजह से हम ये कर रहे हैं.
Denying oneself is not a sad thing. It should not bring a sadness.
अपने आप का इनकार करना ये कोई दुख भरी बात नहीं है, इसके वजह से हमें दुखी नहीं होना है.
is what I understand. There is an ugliness in ourselves.
मैं जैसे समझता हूं हमारे अंदर एक बहुत ही घिनौनापन है,
There is nothing to be worth preserving in our own self.
हमारे अंदर एक गंदगी है, उसको बचा कर रखने लायक कुछ भी नहीं है।
So that is why we should learn to hate and deny ourselves.
और इसलिए हमें सीखना है अपने आप के स्वयं से घृणा करना और उसको इनकार करना।
So as a result, a life of Christ will be manifested in our life.
अगर हम ऐसा करेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर प्रकट होगा।
So instead of the ugliness in our own self, the sweet aroma of Jesus' life will be manifested.
और इसलिए हमारे अंदर जो गंदगी है उसके बजाय हमारे अंदर यीशु मसीह का एक अच्छा सुगंध प्रकट होगा।
Therefore, those who have learned this truth, they will not be a sad people.
जो लोग इस सत्य को सीख लेते हैं वे कभी भी दुखी लोग नहीं बनते।
They will be the happiest people on earth.
वे इस संसार पर इस पृथ्वी के सबसे खुश लोग होंगे।
You can just logically also think, if you always expect others to respect me, others to honor me, others to give me always first priority, and we never get, we become sad.
और हम अपने तर्क शक्ति से भी इसको समझ सकते हैं, अगर हम हर समय लोगों से उम्मीद करते हैं कि लोग हमारा आदर करें, लोग हमारा सम्मान करें, लोग हमें पहले प्राथमिकता दें, और अगर लोग ऐसा नहीं करते तो फिर हमें स्वाभाविक रूप से बुरा लगता है या दुख होता है।
We are going to be disappointed.
हम जरूर दुख सहन करेंगे।
We are going to be the most miserable people on the earth.
और इस संसार के सबसे बुरे लोग या सबसे निराश दयनीय लोग हम बनेंगे।
But those who learn to practice to deny themselves.
पर जो लोग इस बात को सीखते हैं कैसे अपने आप का इनकार करना है,
And allow the life of Christ manifested in their life.
और अपने जीवन में यीशु मसीह के जीवन को वो प्रकट होने देते हैं,
They will be the happiest people.
वे सबसे खुश लोग होंगे।
Paul told Timothy, wrote in 2 Timothy chapter 3.
Paulus ne Timotheus se kaha, dusre Timotheus uske teesre adhyay mein.
He said that in the first one, verse 1 verse, he said that in last days difficult times will come.
Aur pehle vachan se Paulus usko kehta hai ki antim dinon mein kathin samay aayenge.
He listed a few characteristics of the end time.
और अंत के दिनों के कुछ गुण पौलुस कह रहा है।
In verse 2, the first thing he wrote is, men will be lovers of their own self.
और दूसरे वचन में शुरुआत में ही वो कहता है कि लोग स्वार्थी या अपने पर ही प्रेम करने वाले बनेंगे।
Then they'll be lovers of money.
और फिर वे धन के लोभी या धन के प्रेमी बनेंगे।
And they'll be boastful and they will be arrogant.
और वो डींगबार या बड़ाई करने वाले और अभिमानी बनेंगे।
Can we see such a characters now?
क्या हम ऐसे गुणों को देखते हैं?
We need not look at it. Can we see in our own life that tendency to love myself?
हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं, क्या हम अपने ही जीवन में एक स्वभाव देखते हैं जब हम खुद पर ही प्रेम करते हैं?
And to be boastful, foolishly boasting about some irrelevant thing.
और या हमारे अंदर ये बढ़ाई करने का स्वभाव होता है, हम मूर्खता से ऐसे कुछ चीजें जिन जो मायने नहीं रखती उनके बारे में बढ़ाई करते हैं।
And displaying arrogance and pride.
और एक अभिमान और घमंड हम प्रदर्शित करते हैं।
And in verse 5 we read things like lovers of pleasure rather than lovers of God.
और हम आगे भी पढ़ते हैं कि वो सुखविलास के प्रेमी बनेंगे, परमेश्वर के प्रेमी नहीं।
Can we see it in ourselves?
क्या ये हम अपने ही जीवन में देखते हैं?
The temptation to love all the possible pleasures that rather than loving God.
एक प्रलोभन जिसके तहत हम सारे सुखविलास पर प्रेम करते हैं पर परमेश्वर पर प्रेम नहीं करते।
And it says holding a form of godliness.
और पांचवें वचन में लिखा है भक्ति का बेश धरे रहना।
When Sunday comes, we become religious and spiritual.
जब संडे का दिन आता है तो हम धर्मी होते हैं और आत्मिक लोग बनते हैं।
One day we want to attend a meeting and rest of the week we want to live in our own world.
एक दिन हम सभा में जाना चाहते हैं, बचे हुए हफ्ते के दिन में हम अपने ही जीवन जीना चाहते हैं।
Normally we say this for us Sunday is not the most important day.
और हम इस बात को कई बार कहते हैं कि हमारे लिए संडे सबसे महत्वपूर्ण दिन नहीं है।
Monday to Saturday, when we are alone in our work, in our families, in our own, when we are alone, that is the most important thing.
सोमवार से शनिवार तक जब हम अकेले होते हैं, हमारे कार्यस्थल में, हमारे घरों में, परिवारों में, वो सबसे ज्यादा जरूरी है।
That is where we are living life, learning to live life before God when no one else is watching.
और वहां हम ऐसा जीवन जीना सीखते हैं सिर्फ जो परमेश्वर के सामने हो, जहां कोई हमें देख नहीं सकता।
That is the actual spiritual life.
ये है सही वास्तविक आत्मिक जीवन।
And may God really help us, dear brothers and sisters, not just to have a form of godliness and be satisfied with it.
और परमेश्वर सचमुच हमारी सहायता करे मेरे भाई और बहनों, ताकि हमारे पास सिर्फ ये भक्ति का एक वेश धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए, पर सच्चा एक भक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए।
But really missing sadly the power of godliness, the blessing of godliness.
और इस भेष को हम रखे पर उसका जो शक्ति है, जो भक्ति होने से एक शक्ति आती है या आशीष आती है, वो हम चूक जाते हैं।
We read about a person called Zacchaeus.
हम जक्कई नामक एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं।
When Jesus was walking along the road, he saw him on a tree.
और जब यीशु चल रहा था मार्ग पर, तो उसने इसको एक पेड़ पर देखा।
And Jesus invited him.
और यीशु ने उसे एक न्योता दिया।
And told that today I must stay at your house.
और यीशु ने उसे कहा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है।
And all other people judged in their heart, this man Jesus has gone to be the guest of a man who is a sinner.
और वहाँ अन्य लोग ये देखकर कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यीशु तो एक पापी मनुष्य के घर जा रहा है।
But the Zacchaeus was a very sincere person.
पर ये जक्कई बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था।
We read that in Luke 19:8.
और हम इसको लूका 19 उसके 8वें वचन में पढ़ते हैं।
Zacchaeus told the Lord.
जक्कई ने प्रभु से कहा,
Lord, half of my possessions I will give to the poor.
वो कहता है, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ।
And if I have defrauded anyone of anything, I will give back four times as much.
और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके मैंने ले लिया है, तो उसे चौगुना मैं फेर देता हूँ।
So this is a very important thing. This Zacchaeus, when he recognized his failures in the past life.
और ये बहुत जरूरी है कि जब जक्कई ने अपने पुराने जीवन के सारे अपयश को देखा,
he was willing to correct it.
वो उसमें सुधार लाने के लिए तैयार था।
Some cheating business he has had in the done in the past, he was willing to correct those, give it back what he earned out of cheating.
जो लोगों को धोखा देकर पैसा उसने कमाया था, वो पैसा वो वापस लौटाने के लिए तैयार था।
And if he had offended somebody, he was willing to go and by all means go and ask forgiveness.
और अगर उसने किसी का मन दुखाया था, तो वो तुरंत जाकर उनसे माफी मांगने के लिए तैयार था।
And he was willing to forgive others who would have offended.
और जिन लोगों ने उसका मन दुखाया है, उनको भी वो क्षमा करने के लिए तैयार था।
So he was willing to set right things in his life.
और उसके अंदर ये इच्छा थी कि उसके जीवन में जो भी बिगड़ी हुई चीजें हैं, उनको वो सही करे।
Not just passively say that I believe in the Lord Jesus Christ.
सिर्फ बिना कुछ किए ये नहीं कह रहा था वो कि मैं यीशु में अपने हृदय में विश्वास करता हूँ।
So Jesus told Zacchaeus, today salvation has come into this house.
और इसलिए यीशु ने जक्कई से कहा, आज इस घर में उद्धार आया है।
Jesus wants to give such a salvation.
यीशु मसीह एक ऐसा उद्धार देना चाहता है।
A salvation which will bring a transformation.
एक ऐसा उद्धार जो हमारे जीवन में एक परिवर्तन लाता हो।
Our dealings are not the same.
उसके बाद हमारा चाल चलन वैसा नहीं रहेगा।
Our conversations are not the same.
हमारी बातचीत पहले जैसे नहीं रहेगी।
Our thought processes are not the same.
हमारे विचार पहले जैसे नहीं रहेंगे।
The business transactions we do in our office or business when we are alone is not the same.
हमारे व्यवसाय में जो कुछ हम ले पैसे का लेन देन करते हैं अकेले में या हमारे काम के स्तर पे, वो पहले जैसा नहीं रहेगा।
Everything is like being a new creation. All things are passed away.
हमारे जीवन की सारी चीजें एक नई सृष्टि के समान बनेगी, क्योंकि पुरानी बातें बीत जाएंगी।
And that is a transformation. That is the life Jesus wants to give to us.
और ये एक परिवर्तन है जो यीशु हमें देना चाहता है।
Now before closing, I just want to share one aspect विच ट्रबल्स मेनी बिलीवर्स।
और अंत करने से पहले मैं एक बात के एक क्षेत्र के बारे में बांटना चाहता हूं जो कई लोगों को सताता है।
मेनी बिलीवर्स देयर क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द रिएक्शंस ऑफ अदर्स अदर पीपल।
और कई मसीही लोग जो होते हैं उनका जो जीवन है वो यीशु मसीह पर आधारित या यीशु मसीह पर उनका भरोसा नहीं होता पर दूसरे लोग जो उनको प्रतिक्रिया देते हैं उस पर वो आधारित होता है।
When they don't receive what they expect from others, their faith is shaken.
जो दूसरे लोगों से वो अपेक्षा करते हैं अगर उन्हें वो प्राप्त नहीं होता तो उनका विश्वास हिल जाता है।
Their mood is swayed, or they'll stop talking, or they even even their faith, basic faith is shaken.
उनकी भावनाएं बदल जाती है, उनका बर्ताव बदल जाता है, वो लोगों से बात करना छोड़ देते हैं और उनका विश्वास तक हिल जाता है।
And they speak about the bitter experience that they had from other people, especially other believers.
और दूसरे लोग या दूसरे विश्वासियों के वजह से जो उनको कड़वे अनुभव है उनके बारे में वो बात करने लगते हैं।
So their faith, their Christian experience based on the response or what they receive from others.
और उनका जो मसीही अनुभव है वो दूसरे लोगों की प्रतिक्रिया या दूसरे लोगों से वो क्या प्राप्त करते हैं इस पर आधारित होता है।
I want to show you a verse which really challenged me.
मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूँ जिसने मुझे बहुत ज्यादा चुनौती दी।
Matthew 7:12.
मत्ती उसका सातवां अध्याय और उसका 12 वचन।
I'll read from the message Bible.
और इसको मैं मैसेज भावानुवाद से पढ़ूंगा।
Ask yourself what you want people to do for you.
इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे अपने आप से इसको पूछो।
Ask yourself what you want people to do for you.
अपने आप से ये प्रश्न करो कि तुम क्या चाहते हो कि लोग तुम्हारे लिए क्या करे।
Then grab the initiative and do it for them in return.
और फिर तुम खुद उस मौका लेकर उनके लिए वही बात को करो।
And this is a remarkable scripture.
ये एक अद्भुत ऐसा वचन है।
What are we are expecting others to do to us?
जो कुछ हमारी अपेक्षा है कि दूसरे लोगों ने मेरे लिए करना चाहिए।
God wants us to do it to them.
परमेश्वर चाहता है कि हम उसको दूसरे लोगों के लिए करें।
If we are expecting others to visit our home,
अगर हमारे अंदर ये अपेक्षा है कि दूसरे लोगों ने हमारे घर पर आना चाहिए।
Immediately you can decide to visit that brother whom you are thinking, this brother has not visited me for 1 month. Go and visit him.
तुरंत आप निश्चय कर सकते हैं कि जिस भाई ने बहुत समय से आपके घर पे वो नहीं आए, आप जाकर उनके घर पे उनसे मुलाकात कीजिए।
If you are expecting somebody to telephone you,
अगर आप अपेक्षा करते हैं कि किसी व्यक्ति ने मुझे फोन क्यों नहीं किया,
then that thought come immediately, pick up your own phone and call him back.
जैसे ही आपके मन में ये विचार आता है, आप अपना फोन उठाकर उसको फोन कीजिए।
That is what this scripture says.
ये वचन हमें यही सिखा रहा है।
Our Christian life, our faith should not be dependent on something we are depending, something we are expecting from others.
हमारा मसीही जीवन, हमारा मसीही विश्वास, दूसरों से हम क्या अपेक्षा करते हैं इस पर निर्धारित या आधारित नहीं होना चाहिए।
Whatever we are expecting from others to do it back to them.
जो कुछ हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं हमको उनके लिए करना है।
Our complaining and murmuring about others should stop.
हमारी दूसरों के बारे में शिकायत करना, कुड़कुड़ाना, ये सब रुकना चाहिए।
Whatever you are expecting from others to do to you, do it in turn to them.
आप जो अपेक्षा रखते हो कि औरों ने आपके लिए करना चाहिए वो आप उनके लिए कीजिए।
That is Christian life.
वो है मसीही जीवन।
I remember I knew one family some years back.
मुझे याद आता है मैं एक परिवार को कुछ सालों पहले जानता था।
They came from a nominal Christian background.
वो एक नामदारी मसीही परिवार से पृष्ठभूमि से आए थे।
They had some sickness, some difficulties in their family.
उनके परिवार में कुछ बीमारियां थी, कुछ कठिनाइयां थी।
For that reason, the others in the church would show them lot of sympathy.
और क्योंकि वो बीमार होते थे, चर्च में जो बाकी के लोग थे, वो उनके लिए बहुत ही सहानुभूति दिखाते थे।
Young couples would visit their home and cook food for them.
जो जवान जोड़े होते थे, वो उनके घर जाकर उनके लिए खाना तक तैयार करते थे।
And whatever they do, that people are never satisfied.
और उनके लिए जो कुछ भी बाकी के लोग करते थे, वे कभी भी उससे संतुष्ट नहीं होते थे।
They are expecting more and more and never satisfied.
वे दूसरे लोगों से बार बार और अपेक्षा करते थे, कभी भी वे तृप्त या संतुष्ट नहीं होते थे।
I have seen some many other families in the church went out of the way, sacrificially went and helped them.
मैंने देखा था कि कलीसिया में बाकी के परिवारों ने बहुत ज्यादा अपने आप का त्याग कर उनकी मदद की थी।
But they were never grateful, they never acknowledged, and they were never satisfied.
पर उनके मन में कभी भी इस बात के लिए धन्यवाद नहीं था, उन्होंने कभी भी इस बात को माना भी नहीं और कभी भी वे तृप्त नहीं हुए।
Yeah, their faith, their Christian life was based on expecting things from others.
और उनका विश्वास और उनका मसीही जीवन इस बात पर आधारित था कि वे दूसरे लोगों से जो अपेक्षा करते थे।
And it is not based on a personal relationship with Christ.
और उनका मसीह जीवन यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध पर आधारित नहीं था।
They did not knew the principle that it is more blessed to give than to receive.
वे इस सिद्धांत को नहीं जानते थे कि दूसरों से प्राप्त करने से ज्यादा औरों को देना ज्यादा आशीषित है।
That family will always help others to telephone them.
और वे परिवार हमेशा चाहते थे कि दूसरे लोग उनको फोन करें।
So I could see a truth if our faith is depending on expectation from others, I will never be satisfied.
और तब मैंने सत्य को सीखा कि अगर मेरा विश्वास दूसरे लोगों से अपेक्षा करने पर आधारित है, तो मैं कभी भी तृप्त या संतुष्ट नहीं होऊंगा।
I will never be happy.
मैं कभी भी खुश नहीं होऊंगा।
Whatever best others do, still I will find something to complain about.
दूसरे लोग उनका सबसे अच्छा भी मेरे लिए क्यों ना करे, मैं हमेशा शिकायत का कुछ ना कुछ कारण जरूर ढूंढूंगा।
Yeah, my faith is not built, my house is not built on a rock.
क्योंकि मेरा विश्वास और मेरा घर एक चट्टान पर नहीं मैंने खड़ा किया है।
It is dependent on shaky ground of others' responses, what others give me.
दूसरे लोग मुझे क्या देते हैं, दूसरे लोगों के प्रतिक्रिया के रेत पर मैंने अपना घर बनाया है।
And that family finally left the church without telling anybody.
और उस परिवार ने आखिरी में चर्च छोड़ दिया बिना किसी को बताए।
What is a sad end?
और ये कितना एक दुखद अंत है?
It can happen. I saw with my own observation. Everybody did their best. Still, they were not satisfied.
और ये होता है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा कि सब लोग अपना सबसे बेहतर उनको देकर भी वे उसके बाद भी संतुष्ट नहीं थे।
But let this message be written in our heart that Matthew 17, whatever I am expecting others to do to me. God wants me to do it to others.
और इसलिए ये संदेश हमारे मनों में गहरा आज लिखा हुआ होना चाहिए, जो मत्ती 7:12 में यीशु ने कहा, जो कुछ मैं अपेक्षा करता हूँ कि और लोग मेरे लिए करें, मुझे उनके लिए करना है।
That is Christian life.
वो है मसीही जीवन।
My joy is not dependent on some brother calling me.
मेरा आनंद इस बात पर आधारित नहीं है कि एक व्यक्ति मुझे फोन करता है।
When I am expecting someone to call me, I will go and call him.
मैं जब इस बात को अपेक्षा करता हूँ कि मैं किस कोई मुझे फोन करे तो मैं उसको फोन करता हूँ।
When thought comes that somebody has not seen me, I will go and see him.
जब मेरे अंदर विचार आता है कि एक ऐसा व्यक्ति मेरे घर पर आकर मुझे मिला नहीं, तो मैं जाकर उससे मिलूंगा।
When thought comes somebody did not help me, I will go and help that person.
जब मेरे अंदर ये विचार आता है कि किसी व्यक्ति ने मेरी सहायता नहीं की, मैं जाकर उसकी सहायता करूंगा।
So may God all help us to build our Christian life on such a Real foundation.
और परमेश्वर हम सबों की सहायता करे कि हम अपने मसीह जीवन को ऐसे एक सही और अच्छी नींव पर बनाएं।
Our life may be stable and fruitful.
और हमारा जीवन एक स्थिर और फल देने वाला जीवन बने। आमीन।
I thank God for the word He has spoken to us.
मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उस वचन के लिए जो उसने हमसे परमेश्वर ने दिया।
In Matthew chapter 3 verse 7. John says, axe is laid at the root of the tree.
मत्ती रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय और सातवें वचन में यूहन्ना कहता है,
axe is already laid at the root of the trees.
दसवें वचन में लिखा है, कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है.
Yeah, it's 10 verse, verse 10. So, when Jesus came, he wanted to lay the axe to the root of the tree.
और जब यीशु आया तो यीशु चाहता था कि वो जो कुल्हाड़ा है वो पेड़ों के जड़ पर रखा जाए।
That means he wants us to lay the axe to the root of the problem.
इसका मतलब जो भी समस्या है, यीशु चाहता है कि उस समस्या की जड़ पर हम उस कुल्हाड़े को रखे।
The root of our sin is self-centeredness.
और हमारे पाप की जो जड़ है वो हमारा स्वार्थ है।
Many times when we come to the Lord, we feel that the root is something else.
कई बार जब हम प्रभु के पास आते हैं, हम सोचते हैं कि समस्या का जड़ कोई और या कुछ और है।
For example, if a person is a drunkard, he will think that the root of sin is drinking.
और उदाहरण स्वरूप अगर एक व्यक्ति शराबी है, तो वो सोचता है उसके पाप का जड़ शराब है, शराब पीना है।
Somebody has an habit of pornography, he will think the root of sin is pornography.
कोई व्यक्ति को अश्लील चित्र देखने की आदत है, वो सोचता है पाप की जड़ है अश्लील चित्र देखना।
And somebody has some other addiction, so we feel that the root of sin is that addiction.
और किसी और व्यक्ति की और कोई आदत है और वो सोचता है कि उसका जो समस्या का जड़ है वो पूरी आदत है।
But there are people who don't have these habits, but they do not belong to Jesus.
पर ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये आदतें या ऐसे नशा नहीं होते हुए भी वे यीशु मसीह के नहीं है।
Because they have not turned or repented from their self-centered life.
क्योंकि ऐसे लोगों ने अपने स्वार्थी जीवन से या अपने ही अंदर केंद्रित जो उनका जीवन होता है उस जीवन से उन्होंने मन नहीं फिराया है।
In 24 days, 24 hours in a day, how do I live?
एक दिन के जो 24 घंटे मेरे पास होते हैं उसमें मैं कैसे जीता हूँ?
Every situation which comes across my way, do I live according to what I feel like doing?
मेरे जीवन में जो कोई परिस्थिति आती है उसके अंदर क्या मैं इस प्रकार जीता हूँ कि मैं जो भी चाहता हूँ मैं वही करूँगा?
I buy what I feel like buying.
मैं जो खरीदना चाहता हूँ मैं वो खरीदूंगा।
I speak what I want to speak.
जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वो मैं कहूँगा।
I listen to what I want to listen to.
जो कुछ मैं सुनना चाहूँगा मैं उसे ही सुनूंगा।
So that means, or somebody gets angry at me, I react in a way what I want to react.
या अगर कोई व्यक्ति मुझ पर गुस्सा करता है, तो मैं वैसे ही उसको प्रतिक्रिया दूंगा जैसा मैं देना चाहता हूँ।
That means I have not repented from my self-centered life.
इसका मतलब मेरा जो स्व-केंद्रित जीवन है, उससे मैंने मन नहीं फिराया है।
That means still the self is on the throne of my life.
इसका मतलब आज भी मेरे जीवन के सिंहासन पर मैं स्वयं ही विराजमान हूँ।
And I have not turned to God and repented from my self-centered life.
और मैंने परमेश्वर की तरफ मुड़कर अपने स्वयं केंद्रित जीवन से मैंने मन नहीं फिराया है।
I have not seen that the self is the cause of my sin.
मैंने आज तक ये नहीं देखा कि मेरे पाप की जड़ या मेरे पाप का कारण है अपना मैं खुद।
And I have not seen that there is nothing good in me.
और मैंने ये नहीं देखा कि मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है।
So that is repentance is turning from our own way to seeking to do God's will.
और सही मन फिराव यही होता है कि अपनी ही इच्छा करने के बजाय हम पीछे मुड़कर परमेश्वर की इच्छा करना चाहते हैं।
That is why Jesus, when he ended the Sermon on the Mount, said, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' but he who does the will of my Father shall enter the kingdom of heaven."
और इसलिए जब यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश खत्म कर रहा था तो उसने कहा कि वो हर व्यक्ति जो मुझे हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करता बल्कि वो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है।
That means if I say Lord, Lord, I am just having an emotional or excitement about Jesus.
इसका मतलब अगर मैं हे प्रभु कहता हूँ तो इसका मतलब सिर्फ भावुकता में बहकर मेरे पास यीशु मसीह के लिए कोई एक्साइटमेंट है।
Or I might have an intellectual understanding of the truth that Jesus is the Savior.
या मैंने अपने दिमाग में एक बौद्धिक रूप से इस बात को जाना है कि यीशु मसीह उद्धार देने वाला है।
But I have not changed my life in any way, or Jesus has not impacted my life in any way.
पर मैंने अपना जीवन किसी भी प्रकार से बदला नहीं है, या यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं लाया है।
Or in some external things which everybody sees, I must have made some changes.
या कुछ बाहरी चीजों में जो बाकी लोग देख सकते हैं उन क्षेत्रों में शायद मैंने थोड़े बदलाव लाए हैं।
That is not repentance.
उसको मन फिराव नहीं कहते।
And without a proper repentance, we cannot be born again.
और एक सही मन फिराव के बिना हमारा नया जन्म नहीं हो सकता।
We cannot be truly converted without having a proper repentance.
हम सही से एक नया जन्म नहीं पा सकते, परिवर्तित नहीं हो सकते एक सही मन फिराव के बिना.
All other conversion is just a mental acceptance of facts.
इसके अलावा कोई भी परिवर्तन अगर हमारे जीवन में आता है तो ये सिर्फ बौद्धिक या अपने तर्क शक्ति से कुछ चीजों पर विश्वास करने से की वजह से आया है.
Because James also says that even demons, they believe and tremble.
क्योंकि याकूब भी कहता है जो अशुद्ध आत्मा है वे भी विश्वास करते हैं और वे तो थरथराती भी है.
The demons believe that Jesus is the savior of the world.
और जो दुष्ट आत्माएं हैं वो इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह इस जगत का उद्धार करने वाला है.
They believe that God is all powerful.
वे इस बात पर भी विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है.
They believe that Jesus rose again from the dead.
वे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मृत्यु में से फिर जी उठा.
But all these things doesn't make any difference in their life.
पर इन सारे बातों पर विश्वास करकर उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता.
Because the faith of demons is just a mental acceptance of the fact.
क्योंकि शैतानों का या दुरात्माओं का जो विश्वास है ये बस उनके मन के अंदर जो चीजें घटी है उस पर विश्वास रखना है.
So we have to check if our faith is any different from the faith of the demons.
और इसलिए हमें अपने आप को जांचना है, परखना है, क्या हमारा विश्वास इन दुष्ट आत्माओं के विश्वासों से अलग है?
In Acts it says in one verse that the God has granted repentance to the Gentiles.
और प्रेरितों के काम में एक वचन ऐसा है जहां लिखा है परमेश्वर ने अन्य जाति लोगों को मन फिराव का दान दिया.
That means repentance is a gift from God.
इसका मतलब मन फिराव जो है वो परमेश्वर से मिलने वाला एक दान है.
It is not a self-produced action.
ये हमारे प्रयत्नों से तैयार किया हुआ कोई काम नहीं है.
In 2 Corinthians chapter 7 verse 9 it says.
दूसरा कुरिन्थियों उसके 7 अध्याय के 9वें वचन में लिखा है.
Now I now rejoice that you were made sorrowful, but that you were made sorrowful to the point of repentance. And that you are made sorrowful according to the will of God, so that you may not suffer loss in anything through us.
अब मैं आनंदित हूँ पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे.
So there is a godly sorrow which produces repentance.
और एक ईश्वरीय भक्ति होती है जिसके वजह से हमारे अंदर मन फिराव आता है.
ईश्वरीय दुख. So that sorrow, there is a sorrow involved when we see that our self life was always in contrast or in against God's ways.
और हमारे अंदर ये एक ईश्वरीय शोक या दुख होता है जब हम देखते हैं कि हमारा स्वयं का जीवन हर समय परमेश्वर की इच्छा के विपरीत या खिलाफ खड़ा है.
We see that sorrow in the life of Peter when he wept bitterly.
हम इस ईश्वरीय शोक को पत्रस के जीवन में देखते हैं जब उसने बहुत शोक किया था.
In 2 Corinthians chapter 12 verse 21 we see a verse there. It says I'm afraid that when I come again my God may humiliate me before you and I may mourn over many of those who have sinned in the past and not repented of the impurity, immorality, and sensuality which they have practiced.
और दूसरा कुरिन्थी 12:21 में लिखा है, और कहीं ऐसा न हो कि मेरा परमेश्वर मुझे अपमानित करे और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े जिन्होंने पहले पाप किया था और उस गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया.
So here we see that people who have done sin in the past. In the unconverted days, but they have not repented from it.
और यहाँ हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने उनके नए जन्म पाने से पहले के दिनों में पाप किया है पर उससे मन नहीं फिराया है.
They are attending churches, church and they are coming to church every Sunday.
वे कलीसिया में हर संडे को जाते हैं.
But they have not repented, means they are not still practicing that sin, but from their heart they have not turned from their sin.
पर उन्होंने उस पाप से मन फिराव नहीं किया है. इसका यह मतलब शायद नहीं है कि वो आज भी वो पाप कर रहे हैं पर उनके हृदय से उन्होंने उस पाप से वो पीछे नहीं मुड़े हैं.
That means I have not got a hatred towards that sin and I have not come to God in repentance.
इसका मतलब उस पाप के लिए जो मैं करता था मेरे अंदर एक घृणा नहीं तैयार हुई है और मैं परमेश्वर के पास मन फिराव में नहीं आया हूँ.
am still my face or my direction is towards that sin, that I have a pleasure in my heart for that sin.
और आज भी मेरा चेहरा और मेरी दिशा, मन की दिशा उसी पाप के तरफ है कि उस पाप को करने से मेरे मन में भी मुझे आनंद प्राप्त होता है।
So if we are in that state, we can ask God to give us a true repentance, which will help us to turn from that sin.
और अगर हम ऐसे परिस्थिति में हैं, तो हम परमेश्वर से मांग सकते हैं कि परमेश्वर हमें सच्चा मन फिराव का दान दे, ताकि हम इस पाप से भी मन फिरा सके।
And in Romans 6:1 and 6:16, it says, "Shall we sin?"
और रोमियो की पत्री उसके छठे अध्याय के पहले वचन और 16वें वचन में भी यही प्रश्न है, क्या हम पाप करते रहे?
My attitude towards sin is, I don't even want to sin even once.
मेरा पाप के प्रति ऐसा स्वभाव है या ऐसा बर्ताव है कि मैं एक बार भी पाप नहीं करना चाहता।
Any form of sin, whether it's in my words or in my thoughts, I don't want to sin even once.
मैं किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना चाहता, यद्यपि वो मेरे शब्दों से हो, मेरे विचार से हो, मैं एक बार भी पाप नहीं करना चाहता।
I'm ready to give up anything which God tells me to give up.
परमेश्वर अगर मुझे एक चीज छोड़ने के लिए कहता है, तो मैं कोई भी चीज छोड़ने के लिए तैयार हूँ।
Like Zacchaeus, I have a heart to give back anything which I have taken wrongfully.
जक्कई के जैसे मेरे अंदर एक मन हो कि अगर मैंने गलती से या अन्याय से लोगों से कुछ लिया है, तो मैं उसको वापस देने के लिए तैयार हूँ।
It is a work of God in our hearts that brings true repentance.
ये परमेश्वर का एक काम है हमारे मनों में जो सच्चा मन फिराव उत्पन्न करता है।
And it is very important for us to have that true repentance, to have the true faith in Jesus Christ.
और ये बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर सच्चा मन फिराव हो, जिसके द्वारा ही हमारे पास यीशु मसीह के अंदर सच्चा विश्वास तैयार होता है।
और our Christian life will be built on a very shaky foundation.
ऐसा नहीं हुआ तो हमारा मसीह जीवन एक बहुत ही हिलने वाले नींव के ऊपर बंधा होगा।
And when some trouble comes or some difficulty comes, we will not stand for God.
फिर अगर कोई कठिनाई आती है, कोई समस्या आती है, तो हम परमेश्वर के लिए खड़े नहीं हो सकते।
Bible encourages us to examine ourselves to see if we are in the faith.
और बाइबल हमें प्रोत्साहन देती है कि हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या हम आज भी विश्वास में खड़े हैं।
And when God gives us this word, it is a word from God for us to examine ourselves.
और जब परमेश्वर हमें ऐसा वचन देता है, तो ये परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ हमें वचन है कि हम अपने आप को जांचे और परखे। आमीन। इस पूरे लॉकडाउन के समय में मेरा बाइबल पढ़ना बहुत कम था, और सिर्फ नाम के लिए हर दिन थोड़ा पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं बाइबल पढ़ता था। और कुछ हफ्तों पहले मैं एक जवान भाई से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक एक बात दो तीन बार उन्होंने कही, जिसने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। और वो मुझसे कह रहे थे कि मिशेल, मैं तुमको बता नहीं सकता मुझे कितना आनंद होता है जब मैं परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताता हूँ। तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हुआ कि प्रभु, यहाँ एक जवान भाई है जो मेरे से ज़्यादा 3-4 साल में शायद उम्र में बड़े होंगे, पर उनको तेरे वचन पढ़ने में इतना आनंद होता है, और मैं तो तेरा वचन बस पढ़ने के लिए पढ़ता हूँ। मैं मैसेजेस तो बहुत सुनता हूँ, हर मीटिंग में अटेंड करता हूँ, पर तेरे वचन के साथ मैं ज़्यादा समय बिताना भी नहीं चाहता, ना मुझे उसमें ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। तो उस दिन मैं ऐसे ही प्रार्थना करके बाइबल पढ़ने लगा, और उस दिन मैंने भजन संहिता उसका पहला अध्याय मैं पढ़ रहा था, और मैंने पहले दो वचन पढ़े। वो है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्टे करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और उस दिन प्रभु ने मुझसे कहा, उस वचन से बहुत ही स्ट्रॉन्गली प्रभु ने एक बात कही कि वो पहले वचन का जो आखिरी भाग है, कि ऐसा व्यक्ति जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। और प्रभु ने दिखाया कि मेरा कितना समय मैं या तो न्यूज़पेपर पढ़ने में, या पॉलिटिकल न्यूज़ देखने में, या यूट्यूब पे कुछ लोग जो वर्तमान में जो हो रहा है उस पर वीडियोस बनाते हैं, और सरकार का मानो एक प्रकार से वो मजाक उड़ा रहे हैं या ठट्ठा कर रहे हैं, या ये जो पॉलिटिकल जो मीम्स आते हैं या फोटोज आते हैं, इस चीजों को देखने में मैं इतना समय बिताता हूँ। तो प्रभु यही कह रहा था कि अगर तुम ऐसे ठट्ठा करने वाले लोगों के साथ बैठोगे, बैठोगे मतलब ऐसे वीडियोस देखोगे, ऐसे न्यूज पढ़ने में ही अगर समय बिताओगे, तो कभी भी तुम्हें मेरे वचन पढ़ने में आनंद हो ही नहीं सकता। तो उस दिन मैंने सचमुच जब अपने जीवन को देखा, तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं कितना समय दिन में, थोड़ा भी, कभी 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 दो क्लास के बीच में एक 10 मिनट भी अगर मिलते हैं तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता था, कोई आर्टिकल पढ़ता था या क्रिकेट का कोई स्कोर चेक करता था। तो मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मुझे क्षमा करना और मुझे सहायता कर कि इसके आगे मैं इन सब चीज़ों से दूर रहूँ। तो पिछले 2-3 हफ्ते से मैंने इन सारी चीज़ों को ऑलमोस्ट बंद किया, ना न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ या यूट्यूब पे वीडियोज़ नहीं देख रहा। तो इन दिनों में ऐसा नहीं कि अचानक मैं परमेश्वर के वचन को बहुत ज़्यादा उत्सुकता से पढ़ने लगा हूँ या बहुत मैं समझने लगा हूँ, पर एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि काफ़ी बार जो दिन में थोड़ा समय मिलता है उसमें मुझे जो मैंने सुबह पढ़ा होगा वो याद आता है, या जो अगर कोई क्रिश्चियन बुक में पढ़ रहा हूँ तो उसमें से कोई वचन मुझे याद आता है, कुछ वर्ड याद आता है, या थोड़ा समय मैं प्रार्थना करने में बिता सकता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि अब मेरे पास इतना ज़्यादा समय है जो पहले नहीं था, क्योंकि पहले तो सारा समय, थोड़ा भी समय मिलता था तो इन्हीं चीज़ों में मैं वेस्ट कर देता था। तो मैं अभी आगे तो मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु अभी तो सिर्फ ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी बंद करके मैं तेरा वचन पढ़ने लगा हूँ, पर आने वाले दिनों में ऐसा होने दे कि मैं इसमें, उसमें जो लिखा है कि ही डिलाइट्स इन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, वो एक प्रसन्नता या आनंद मुझे महसूस होने दे जब कभी मैं तेरे वचन को पढ़ूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे इस वचन से प्रोत्साहित किया। आमेन।
थैंक गॉड फॉर व्हाट आई हर्ड टुडे।
परमेश्वर का धन्यवाद है वो जो आज सुना उसके लिए।
Brother Biju was sharing about, you know, the first, the memory was about, you know, the five loaves of bread and fish.
और जैसे भाई बिजू शुरुआत में बता रहे थे उस 5 रोटी और 2 मछली के बारे में, उससे आशीषित होने के बारे में।
Yeah, sir, I had earlier meditating on the same verse.
और मैं पहले इसके ऊपर ही इस वचन पर मैं मनन कर रहा था।
If you see, go to this chapter, John chapter 6 and verse 8.
और लिखना उसका 6th अध्याय उसका 8 वचन।
So it says, another of his disciples, Andrew, Simon's brother, spoke up. He says, here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish.
यहाँ लिखा है यूहन्ना 6 अध्याय उसके 8 वचन, उसके चेलों में से शमौन पत्रस के भाई अंद्रियास ने कहा, यह एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां है।
You know, first is like when the first was when the crowd came, you know, like people were like, the disciples were worried, you know, how we'll feed all these people. So many people are there.
इतनी सारी भीड़, इतने सारे लोगों को देखकर सारे जो चेले हैं वो थोड़े चिंतित हो गए कि कैसे इनको खिलाया जाएगा।
And Jesus knew, you know, he knew it will be available. Things would be done as per God's will.
और यीशु यहाँ जानता था कि सारी चीजें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यहाँ पे उसका प्रयोजन किया जाएगा।
But now if you see this place, where it says a small boy who was carrying this 5 small barley loaves and 2 small fishes.
यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे लड़का था जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां थी वो उसको लेकर चल रहा था ये लड़का।
The first is he was a small boy, like faith like a small boy.
और पहली चीज एक छोटा सा यहाँ पे लड़का है, एक छोटे विश्वास के समान वो है।
He had come to hear God, come to hear Jesus.
और वहाँ पर यीशु मसीह को सुनने के लिए आया है।
And second thing, he had bought something to know, like he thought if I get hungry, then I'll keep this 5 loaves and 2 fishes. But he was ready to give that to Jesus, you know, like I am ready to give that. No, it's okay. If I have to share it, I'll share it.
और यहाँ पर वो दूसरी बात ये हम देखते हैं कि जब वो वचन सुनने के लिए आया तो अपने साथ ये 5 रोटी 2 मछलियां अपने लिए लेकर आया, लेकिन वो बाद में जरूरत होने पर यीशु को देने के लिए भी वो तैयार हो जाता है।
He could have hid that 5 loaves and 2 fishes and said, "I'll eat it later on when all people go. I can satisfy my hunger."
वो शायद ये सोच सकता था कि शायद सारे लोग जाने के बाद में इस 5 रोटी और 2 मछली के निकाल कर मैं अपने लिए अपनी ही भूख को संतुष्ट करने के लिए इससे खाऊंगा।
But you know, it is he gives it up. So because of that, many people are fed and all go.
और यहाँ पर इसलिए उस बच्चे ने अपनी उस रोटी और मछली को दे दिया, इससे सारे लोग वहाँ पर पूरी तरह से तृप्त हुए इस भोजन से।
First, as we are hearing a lot of, you know, about things about our lives, how we live, but one thing is more, is Bible really speaks is from the start till the end, it's about our fellowship, our personal relationship with God.
सारी चीजें जो हम सुन रहे हैं, एक ही चीज शुरुआत से लेकर अंत तक हम देख सकते हैं कि हमारी संगति, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जो है उसके बारे में।
am I really willing to give my life up, you know, for, like Bible says to carry my cross. Really, see, you can, I can read, I can say, I will carry the cross, but am I really willing to carry the cross?
और क्या मैं वचन में जैसे लिखा है कि मुझे अपने अपने क्रूस को उठाना है, तो क्या सच में मेरी इच्छा है उस क्रूस को उठाने की?
Like as Michel was saying, you know, reading the word of God, am I really willing? Am I, do I really love to read the word of God?
जैसे मिशेल ने जैसे बताया कि क्या मुझे सच में वचन को पढ़ना पसंद है?
So if I am willing and if I am really love those things to the God, then God can do a work in my life.
और यदि मेरे अंदर इच्छा है और मैं उसे करना चाहता हूँ, तब परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर सकता है।
And then my life will be a blessing for my others, not blessing for others, but the places where I work, you know, the places like that at my home, a small, small area where I really give myself up and get the quality of Christ, there's a blessing in that place.
और जब मैं अपने आप को ऊपर की तरफ यीशु मसीह को मैं समर्पित कर दूंगा, तब जहां जहां मैं जाता हूं, शायद वो मेरे घर में, काम की जगह, कोई भी क्षेत्र जहां पर मैं जाता हूं, वहां पर मैं औरों के लिए आशीष बन जाऊंगा।
Let God also help us to be willing to give up our lives, you know, like to give that whatever we have to Christ, that you know, others can also be blessed.
और सच में परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हमारा जीवन भी हम परमेश्वर को इस तरह के देने के लिए मदद करे, ताकि वो परमेश्वर के देह के लिए आशीष का कारण बन सके।
And first and foremost, one thing that be in my life that we may really seek His kingdom and His righteousness always.
और मेरे जीवन के अंदर सबसे पहले उसकी धार्मिकता और उसके राज्य को मैं खोजना चाहता हूँ।
Like God will help us in that.
और परमेश्वर हमारी इसमें सहायता करेगा।
I like to read from Mark 4:24.
Markus 4:24 मैं पढ़ना चाहती हूँ।
And Jesus was saying to them, Take care what you listen to.
और यीशु मसीह उनसे कहता है Markus 4:24 में, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो।
Every day there are two voices I can hear.
और प्रतिदिन मैं दो प्रकार की आवाजों को सुन सकती हूँ।
One is Jesus' voice.
पहला यीशु मसीह की आवाज।
और other one is voice of Satan.
और दूसरी आवाज जो है वो शैतान की आवाज।
I have to be very careful what I am listening to.
मुझे बहुत ही सावधान या चौकस रहना है कि मैं कौन सी आवाज को सुन रही हूँ।
If I am listening to the voice of Jesus,
और यदि मैं यीशु मसीह की आवाज को सुन रही हूँ, तो
so that then I can grow my in my spiritual life.
और तब मैं मेरे आत्मिक जीवन में मैं आगे बढ़ पाऊँगी।
If I am listening to the voice of Satan, I won't grow in spiritually.
और यदि मैं शैतान की आवाज को सुन रही तो मैं आत्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाऊंगी।
So in verse 24, by your standard of measure, it will be measured to you.
और 24 वचन में आगे लिखा है कि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हें तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा।
So my what I am listening, that is my standard of measure.
और जिस आवाज को मैं सुन रही हूँ या जो जिसको मैं सुन रही हूँ, वही मेरा नाप है जिससे मैं चीजों को तोलती हूँ।
So, if I am listening to the voice of God, God will give me the same measure of life to me.
और यदि मैं परमेश्वर को सुनती हूँ, उसकी आवाज को, तो वही मात्रा में उसी नाप के अंदर परमेश्वर अपने जीवन को मुझे देगा।
Not only that, more will be given you besides.
और उसके आगे लिखा है कि उतना ही नहीं, लेकिन उसको उससे अधिक मुझे दिया जाएगा।
More of life of Jesus, God will give to me.
और परमेश्वर यीशु मसीह का और अधिक से अधिक जीवन बहुतायत से मुझको देगा।
Verse 25, it's written, whoever does not have even what he has shall be taken away from him.
और 25 वचन में लिखा है, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा।
So, like Eve, she listened to the lies of Satan.
और हम हवा के बारे में जानते कि उसने शैतान के उस झूठ को सुना।
So, God has taken whatever she has from her.
और जो भी उसके पास था परमेश्वर ने उसको ले लिया।
Whatever she had, God has taken it, took it from her.
और जो कुछ भी हवा के पास था परमेश्वर ने वो सारी बातों को ले लिया उससे।
So God was speaking to me what I am listening every day of my life.
और प्रभु मुझसे बात कर रहा था कि प्रतिदिन मेरे जीवन के अंदर मैं क्या सुन रही हूँ।
Each time, daily, I am facing many things. So I need to very careful. I need to listen to the voice of Jesus.
और प्रतिदिन मैं बहुत सारी आवाजों को सुन पाती हूँ। मुझे बहुत ही सावधानी रखनी है कि मैं यीशु मसीह की आवाज को ही केवल सुनूं।
मतलब यीशु मसीह जो कल कर सकता है यीशु मसीह आज भी कर सकता है। यीशु मसीह ने पहले चमत्कार किया, सब कुछ किया, वो यीशु मसीह अभी भी कर सकता है। और युगानुयुग एक सा है, मतलब पीढ़ी से पीढ़ी गॉड ऐसे ही रहेगा। हमारे लिए सब कुछ, हमको जो जरूरत है वो सब कुछ देगा। और यीशु मसीह आज भी हम सबको चंगाई देता है। अगर हमको कुछ प्रॉब्लम रहता है, वैसे पहले भी लोगों को कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो गॉड भी उनको भी चंगाई देता है। उसमें यही लिखा है कि इब्रानियों 13:8 में यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, मतलब हमेशा पीढ़ी से पीढ़ी तक गॉड ऐसे ही रहेगा। और गॉड ने मुझे एग्जाम में मदद किया, आपके लिए थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू।